नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अर्जुन ने पूछा कि जो गीता जी में आपने ज्ञान दिया था वो भूल गया, मुझे दोबारा सुनाओ। भगवान ने कहा भैया मैंने तो योग के अंदर स्थित होकर के तुझे ज्ञान दिया था, अब मैं तो योग में तो स्थित हूं नहीं, कैसे सुनाऊं। प्रश्न होता है कि भगवान तो नित्य योगी है, हम लोगों के समान उनकी वृत्तियां थोड़ी बदलती हैं, लेकिन भगवान गीता की महिमा बताते हैं, ज्ञान बड़ा दुर्लभ है, सीधे सीधे न कह करके और बताते हैं कि अर्जुन हमको एक ब्राह्मण मिले थे, काश्यप ब्राह्मण, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई उनके मिलने पर, उन्होंने मुझे कथा सुनाई और मुझे कहा कि देख सावधान होकर सुनो, तो मैंने सावधान होकर के सुना। उन्होंने फिर परमात्मा की प्राप्ति के कई स्वरूप बताए। उस सिद्ध महर्षि ने बताया कि इस लोक में किए हुए शुभ या अशुभ कर्मों का फल भोगे बिना नष्ट होगा ही नहीं। यदि तत्व ज्ञान हो गया तब तो इनसे छुटकारा मिल जाएगा, तत्व ज्ञान नहीं हुआ तो शुभ और अशुभ कर्मों का अंत नहीं है, वे एक कर्म के बाद एक शरीर धारण कराकर अपना फल देते रहते हैं, शुभ अशुभ कर्म। जैसे फल देने वाला वृक्ष फलने के समय आने पर बहुत से फल देता है, आम की ऋतु आई खूब आम होए, निमोली खूब निमोली आई, इसी प्रकार से शुद्ध हृदय से किए हुए पुण्य का फल अधिक होता है और कलुषित चित्त से किए हुए पाप के फलों में भी अधिकता होती है, क्योंकि जीवात्मा मन को आगे करके प्रत्येक काम में प्रवृत्त होता है। काम से, क्रोध से, लोभ से घिरा हुआ जिस प्रकार कर्म जाल में आबद्ध होकर गर्भ में प्रवेश करता है, उसका भी तुम वर्णन सुनो। पहले जीव पुरुष के तत्व में प्रविष्ट होता है, फिर स्त्री के गर्भ में जाता है, फिर वहां मिलता है, फिर उसको कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ शरीर मिलते हैं। सूक्ष्म और अव्यक्त होने के कारण वास्तव में वह जीवात्मा शरीर को पाकर उसके दोषों में कभी लिप्त नहीं होता, आसक्त हो गया, वही संपूर्ण भूतों का बीज है, उसी के द्वारा सब प्राणी जीवित रहते हैं। ऐसा होने पर वह अज्ञानवश जीव भाव से विभक्त होकर गर्भ के प्रत्येक अवयव में व्याप्त होता है और इंद्रियों के स्थानों में स्थित होकर चित्त के द्वारा सबको धारण करता है। जीव के प्रवेश करने से गर्भ चेतनवान होता है, जो आजकल लोग कहते हैं कि जीव बाद में आता है, गलत है, शास्त्र कहता है कि जीव जब गर्भ में प्रवेश करता है तो गर्भ चेतनावान है, सब अंगों में चेष्टा होती है। जैसे गलाए हुए लोहे का रस जिस तरह से सांचे में ढाला जाता है उसी का आकार धारण कर लेता है, इसी प्रकार जीव का गर्भ में प्रवेश होता है और जीव भी जिस तरह के शरीर में प्रवेश करता है उसी का आकार उसको प्राप्त होता है। जैसे आग लोहे के गोले में प्रविष्ट होकर उसे खूब तपाकर अग्निमय बना देती है, उसी प्रकार तुम जीव का गर्भ में प्रवेश समझो, वहां से इसका जन्मना चालू होता है, फिर वो नाना प्रकार के कर्म करता है, कभी उसको अच्छे सुयोग मिल जाए और परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तब वो संसार के सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो सबका मित्र है, सब कुछ सहने वाला है, मन को निग्रह में रखने में तत्पर है, नियम परायण है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है, जो अभिमान से दूर रहता है, वह जीवन मुक्त समझना चाहिए। जीवन मरण सुख दुख लाभ हानि प्रिय अप्रिय में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी की वस्तु के अंदर लोभ नहीं रखता है, किसी की बात की अवहेलना नहीं करता है, जिसके मन पर सुख दुख का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसकी चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना भाई बंधु और या संतान या परिवार का कोई नहीं मानता है, ये मेरा नजदीकी है ये मेरा दूर है ऐसा भेद नहीं रखता, धर्म अर्थ काम का त्याग करता है, सब प्रकार की आकांक्षाओं से रहित है, जिसके न धर्म में आ सकती न अधर्म में, जो पूर्व के संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का नाश कर चुका है, वह जीवन मुक्त कहा जाता है। क्या बढ़िया बात है। जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं, जिसकी दृष्टि में ये जगत अश्वत्थ के समान आज है, अश्वत्थ माने पीपल, तो संसार को पीपल बताया है, पीपल माने पीपल पूजने के लिए होता है, ऐसे ही संसार सेवा के लिए है, अश्वत्थ माने कल तक भी रहने वाला नहीं है, जो सदा इसे जन्म मृत्यु जरा अवस्था से युक्त देखकर अस्थिर समझता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में रहती है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर लेता है, जो आत्मा को शब्द स्पर्श रूप रस गंध परिग्रह आदि से रहित मानता है, अज्ञेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन है, निराकार है, कारण रहित है, निर्गुण है, गुणों का भोक्ता, वह मुक्त माना जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक एवं मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन के आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद्व और परिग्रह से रहित तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्रिय समूह को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उसे मुक्त ही समझना चाहिए, क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत अचल नित्य अविनाशी एवं सनातन परमात्मा को प्राप्त होता है। विस्तार बहुत विस्तार है, जो हर किसी के काम का भी नहीं है। कृष्ण, मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य काश्यप को जब इस प्रकार उपदेश दिया था, तो वह अपने अभीष्ट स्थान को चला गया। कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे ये प्रसंग सुनाकर वही अंतरित हो गए। तो हे पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को सुना? मेरा तो विश्वास है, जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिसे ज्ञान का उपदेश प्राप्त नहीं है, वो मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। इसका अंतःकरण शुद्ध है, वही जान सकता है। ये मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बताया है। इस जगत में कभी 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 किसी भी मनुष्य ने ऐसा रहस्यमय श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य उसके सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसका चित्त दुविधा में पड़ा हुआ हो, वह उसे अच्छी तरह समझ नहीं सकता है। सनातन ब्रह्म ही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्म में ही अमृतत्व को प्राप्त होता है और सदा सुखी होता है। स्त्री वैश्य शूद्र पापयोनि चांडाल वे भी इस परम आश्रय से परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्तियुक्त उपदेश दिया है, उसके साधन के उपाय बताए हैं, सिद्धि फल मोक्ष और दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, कोई भी मन बुद्धिमान श्रद्धालु पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका त्याग कर देता है, वही इस उपाय के द्वारा इस अमृतमय उपदेश का रस प्राप्त कर सकता है। आज कोई ऐसा ही योग है, सेठ जी का भी ऐसा ही लेख, यहां भी यही बात। इस विषय का कोई 6 महीने तक ठीक मनन करे तो उसे अवश्य सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अर्जुन, इस विषय में पति पत्नी संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूं। एक ब्राह्मण जो ज्ञान विज्ञान के पारगामी विद्वान थे, एकांत स्थान में बैठे हुए थे। यह देखकर उनकी पत्नी ब्राह्मणी उनके पास आकर बोली, हे प्राणनाथ, मैंने सुना है स्त्रियां पति के कर्म के अनुसार प्राप्त हुए लोक में जाती हैं, किंतु आप तो कर्म करना छोड़कर चुपचाप बैठे हो, मेरे से आप बोलते तक नहीं हो, मेरे प्रति कठोरता का बर्ताव करते हो, फिर आप जैसे पति को पाकर मैं किस लोक में जाऊंगी। स्त्री के कहने पर पवित्र अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता मुस्कुराकर बोलने लगे, प्रिय, तुमने जो बात कही है मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। संसार में जो ग्रहण करने योग्य दीक्षा और व्रत आदि हैं तथा इन आंखों से दिखाई देने वाले जो स्थूल कर्म हैं, उन्हीं को ही कर्म माना जाता है। कर्मठ लोग ऐसे ही कर्म को कर्म के नाम से पुकारते हैं, किंतु जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है वे लोग कर्म के द्वारा मोह का नियंत्रण करते हैं। 10 होता मिलकर के जिस यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं वो सुनो। 10 होता कौन? एक तो कान, एक त्वचा, एक नेत्र, एक जीभ, जीभ के अंदर वाग इंद्रिय, एक नाक, हाथ, पैर, मलमूत्र का त्याग करने वाले इंद्रियां, ये 10 हैं, ये होता है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वाणी, क्रिया, गति, मूत्र त्याग, मल त्याग, ये 10 हविष्य है। दिशा, वायु, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, विष्णु, इंद्र, प्रजापति और मित्र, ये 10 देवता अग्नि है। सारांश यह है कि 10 इंद्रिय रूपी होता 10 देवता रूपी अग्नि में 10 विषय रूपी हविष्य एवं सुविधाओं का हवन करते हैं। ये हवन करने वाला अकर्मण्य कैसे हो सकता है? कितनी बढ़िया बात है, तुमने मुझे अकर्मण्य कैसे कहा? मैं तो ये हवन कर रहा हूं, इन इंद्रियों के द्वारा विषयों को लेकर देवताओं के अंदर हवन कर रहा हूं, इसलिए मेरे हवन को पहचानो। ब्राह्मणी ने कहा कि भगवान, जब सभी सूक्ष्म शरीर में ही रहते हैं तो एक दूसरे को देख क्यों नहीं पाते, और उनके स्वभाव कैसे हैं? कि यहां देखने का अर्थ और है प्रिय, देखने का अर्थ जानना होता है, गुणों को जानना ही गुणवान होता है। लोग इंद्रियों के अधीन होते हैं, अरे इंद्रियों को जानो। नाक का काम है गंध को ग्रहण करना, ये जानो। माने ये गंध जिसने ग्रहण किया है वो नाक तक सीमित है, मैं तो केवल जानकार हूं, ऐसे अपने को इंद्रियों से अलग करो। प्रत्येक इंद्रियों को अपने से अलग करते हुए सबसे अलग होकर बैठ जाओ, फिर तुमको किसी प्रकार ये संदेह नहीं होगा। प्राण 5 होते हैं। ब्राह्मणी बोली कि मैंने तो 7 समझा था, किंतु आप प्राण 5 बोलते हैं। ब्राह्मण ने कहा, यूं तो 10 प्राण भी होते हैं पर प्रधान 5 ही हैं। एक बार इन 5ों प्राणों ने पितामह ब्रह्मा जी से कहा कि कि भगवान हम में जो श्रेष्ठ है उसका नाम बताओ। प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, ये पांच प्राण है। हमारे में श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्राणधारियों के शरीर में स्थित हुए तुम लोगों में से जिसका लय हो जाने पर सभी प्राण लीन हो जाते हैं और जिसके संचरित होने पर सबके सब संचरित होते हैं, वही श्रेष्ठ है। अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां जाओ। तब प्राणवायु ने अपान आदि से कहा कि मेरे लीन होने पर प्राणियों के शरीर में स्थित सभी प्राण लीन हो जाते हैं और मेरे संचरित होने पर सबके सब संचार करने लगते हैं। सबसे श्रेष्ठ मैं हूं। अब देखो मैं लीन हो रहा हूं, फिर तुम्हारा भी लय हो जाएगा। इस प्रकार प्राणवायु थोड़ी देर के लिए लीन हो गया और उसके बाद चला गया। तब समान और उदान वायु ने उनसे कहा, प्राण तुम हमारी तरह शरीर में व्याप्त होकर नहीं रहते, इसलिए तुम हम लोगों में से श्रेष्ठ नहीं हो। केवल अपान तुम्हारे वश में है, अतः तुम्हारे लय होने से हमारी हानि नहीं हो सकती। उन दोनों के वचन सुनकर प्राण कोई उत्तर नहीं दे सका। फिर अपान ने कहा, मेरे लीन होने पर प्राणी लीन हो जाते। ऐसे सब प्राणों की बातें हैं। ये सब देख करके कहा, सब अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ है। ये सब बातें बताई। इस विषय में सहस्रार्जुन और समुद्र का संवाद एक इतिहास है। पूर्व काल में सहस्रार्जुन के नाम से प्रसिद्ध एक राजा था, जिसके 1000 भुजाएं थी। उसने केवल धनुष बाण की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को अपने अधिकार में ले लिया। एक बार वो समुद्र के किनारे विचर रहा था। वहां उसने अपने बल के घमंड में आकर सैकड़ों बाणों की वर्षा से समुद्र को आच्छादित कर दिया। तब समुद्र प्रकट होकर कहने लगा, वीरवर, आप मेरे पर बाणों की वर्षा मत करो, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपका काम आऊंगा। आपके द्वारा छोड़े हुए बाण मेरे अंदर के प्राणियों को मार रहे हैं, उन्हें अभयदान दो। तब सहस्रार्जुन बोला, समुद्र, यदि कहीं मेरे समान धनुर्धर कहीं मौजूद हो जो युद्ध में मेरा मुकाबला कर सके, उसका पता बताओ, तब मैं तुमको छोड़ूंगा, नहीं तो बाण चलाऊंगा। समुद्र ने कहा, महाराज घमंड मत करो, आप तो अभी जन्मे हो, थोड़े दिन बाद चले जाओगे। मैंने तो कितने ही राजाओं को जन्मते देखा है, कितनों को मरते देखा है। आप जैसे घमंड करने वाले कई आ गए, कई चले गए। घमंड में करने में क्या सरलता पर आप विचार करो। फिर भी यदि आप ऐसा करते हो तो जाओ, जमदग्नि नाम के एक ऋषि हैं, उनके आश्रम पर जाओ और उनका पुत्र परशुराम है, उसके साथ युद्ध करो। सहस्रार्जुन ने विचार किया, जमदग्नि का पुत्र परशुराम, वो मेरा क्या कर सकता है। बड़े क्रोध में भर करके परशुराम जी के पास पहुंच गया और अपने भाई बंधुओं के साथ उनके प्रतिकूल बर्ताव करने लगा। परशुराम जी को अच्छा नहीं लगा। परशुराम जी आए और कहने लगे, सहस्रार्जुन, हम लोग जंगल में बैठे हैं, हम लोगों को क्यों परेशान करते हो, क्यों तंग करते हो। सहस्रार्जुन का, परशुराम नाम तुम्हारा है? कहा, ये तो मेरा नाम। तुम्हारे पिता का नाम जमदग्नि है? मेरे पिता का नाम जमदग्नि है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। क्यों मेरे से युद्ध करूं? मैं तुमको कोई कुछ नहीं कहता, तुम शांत हो जाओ, तुम अपनी जगह जाओ, हम अपने आश्रम में बैठे हैं। कि नहीं, मैं तुमसे युद्ध करूंगा। परशुराम जी ने कहा, मेरे से बहुत लोगों ने युद्ध करके देख लिया है, पहले उन लोगों से पूछ आओ, उसके बाद मेरे से युद्ध करो। मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूं। लेकिन सहस्रार्जुन को तो बड़ा घमंड, जब बहुत घमंड करके परशुराम जी पर वो स्वयं पहल करके बाण चलाने लगा, तब परशुराम जी का तेज प्रज्वलित हो गया, हाथ में परसा लिया और उसके बाणों को काटते काटते उसके पास पहुंच गए। और जैसे फरसे से वृक्ष काटा जाता है, ऐसे उसके भुजाएं काटने लगे, जमीन पर पड़ गया। भाई बंधु एकत्रित हो गए और सब मिलकर के एक साथ तलवार शक्तियां लेकर परशुराम जी की तरफ दौड़े। परशुराम जी महाराज भी धनुष लेकर के रथ पर सवार होकर के बाणों की वर्षा करने लगे, सारी सेना का श्रृंगार कर दिए। परशुराम जी के भय से पीड़ित होकर के इधर उधर भाग गए, जैसे सिंह के द्वारा पीड़ित होकर पशु पक्षी भाग जाते हैं, गुफाओं में छिप जाते हैं, ऐसे वे वहां से भाग गए। बहुत दिनों तक ब्राह्मणों का दर्शन न कर सकने के कारण वो सहस्रार्जुन के सगे संबंधी शूद्र हो गए। जब तक किसी संत पुरुष का, श्रेष्ठ पुरुष का, ब्राह्मण का दर्शन नहीं होता है तो लोगों के कर्म इतने मलिन हो जाते हैं कि वे शूद्र की तरह बन जाया करते हैं। तब वे कई द्रविड़ हो गए, कई आभीर हो गए, कई पुंड्र हो गए, कई शबर हो गए, क्षत्रिय होते हुए भी शूद्र अवस्था में चले गए। तत्पश्चात क्षत्रिय वीरों के मारे जाने पर फिर उनकी स्त्रियों से दूसरे प्रकार के पुत्र पैदा हुए। परशुराम जी ने बड़े होने पर उनको भी मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। फिर आकाशवाणी हुई, बेटा परशुराम, इस हत्या के काम से अब निवृत्त हो जाओ, भला बार बार इन बेचारे क्षत्रियों का प्राण लेने से क्या लाभ। इसी प्रकार उनके दादा ऋषि आदि ने भी समझाते हुए कहा, बेटा छोड़ दो, क्षत्रियों को मत मारो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारे हाथ से राजाओं का वध अच्छा नहीं है। हमारी कही हुई एक बात सुनो, अलर्क नाम के एक राजर्षि थे, बड़े तपस्वी, सत्यवादी महात्मा। उन्होंने अपने धनुष की सहायता से समुद्र पर्यंत पृथ्वी को जीत करके बड़ा परिश्रम किया। उसके पश्चात उनका मन सूक्ष्म तत्व को खोजने लगा। अब वे बड़े बड़े कर्मों का आरंभ त्याग कर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सूक्ष्म तत्व की खोज के अंदर लग गए। अलर्क कहने लगे, मुझे मन से ही बल प्राप्त हुआ है, अतः यही सबसे बड़ा प्रबल है। मन को जीत लेने पर मुझे स्थायी विजय मिली है। मैं इंद्रिय रूपी शत्रुओं से घिरा हुआ था, इसलिए इंद्रियों ने हमारे पर हमला बोला, मैं इंद्रियों के सामने हार गया। दूसरे शत्रुओं के लड़ने से क्या फायदा, अपने अंदर बैठे हुए शत्रुओं से लड़ो। मन चंचलता के कारण सभी मनुष्यों से तरह तरह के कर्म कराता रहता है, तो फिर मैंने मन को मारना सीखा है और मेरी और मन की आपस में खूब बातचीत होती है। मन बोलता है, ए अलर्क, तू मुझे बहुत मारता है, और यदि तुम हमको और मारोगे, बाण चलाओगे, तो मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को चीर डालूंगा, इस अवस्था में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अलर्क ने कहा कि नहीं नहीं, किसी प्रकार नहीं हो सकती, क्योंकि तू मेरे बस में हो जाएगा तो तू मेरे अधीन रहेगा, मैं तेरे अधीन रहने वाला नहीं हूं। एक एक इंद्रियों के लिए कहा कि तू इन इंद्रियों को जीत सकता है, मुझे नहीं जीत सकता। इसलिए बेटा परशुराम, तुमको लड़ना है तो अपने इंद्रियों से लड़ो, मन से लड़ो, भोग तृष्णा से लड़ो। बेचारे दूसरे लोगों से लड़कर के इनका प्राण लेकर तुम कौन सा शुभ काम कर लोगे। पितामहों के वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना अभिमान, अपना क्रोध सब कुछ त्याग दिया और वे ऊंची सिद्धि को प्राप्त हो गए थे। देवी ब्राह्मण ने कहा, वही ब्राह्मण अपने पत्नी से बोल रहा है कि इस संसार के अंदर तीन प्रबल शत्रु हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। दूसरा हर्ष, प्रीति और आनंद। तीसरा क्रोध, तृष्णा और अभिनिवेश। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। इन तीन तीनों को बांट बांट करके देखो तो तुम्हारे ये शत्रु मिलेंगे। ये नष्ट करने योग्य है, पर मैंने इनको मित्र मान लिया, मैं नष्ट नहीं कर सका। एक और दिन के साथ में दोष छिपा रहता है, उसका नाम लोभ है। उस लोभ को मारने के लिए मैंने वैराग्य को पकड़ा नहीं था, मुझे बहुत तकलीफ दी। लोभ से तृष्णा, तृष्णा से चिंता, ऐसे एक एक से जुड़े हुए हैं, मुझे क्या पता। अब मुझे सब दोषों का ज्ञान हो गया, मैं इन दोषों को अपने अंदर लीन कर रहा हूं। बताओ मैं चुपचाप कैसे बैठा हूं। एक समय राजा जनक ने किसी अपराध में पकड़े हुए ब्राह्मण को दंड देते हुए कहा, ब्राह्मण आप मेरे राज्य से बाहर चले जाइए, आपने हमारे यहां अपराध किया है। ब्राह्मण ने राजा को उत्तर दिया, महाराज बताइए आपके अधिकार में कितना राज्य है, इस बात को जानकर मैं शास्त्र के अनुसार आपकी आज्ञा पालन करने की, दूसरे राजा के राज्य में निवास करने की चेष्टा करूंगा। मुझे आपके राज्य की सीमा बता दो कि ये इतना इतना मेरा राज्य है। ब्राह्मण के प्रश्न करने पर बड़े बुद्धिमान शास्त्रज्ञ मर्मज्ञ राजा जनक बार बार गर्म श्वास लेने लगे, छोड़ने लगे, ऐसे करने, कुछ जवाब नहीं दे सके। थोड़ी देर के बाद उनके वचनों में कुछ नम्रता आई, फिर वे कहने लगे, हे ब्राह्मण राज्य की सीमा पूछ ली क्या बताऊं, मेरे बाप दादों के समय से मिथिला प्रांत के राज्य पर मेरा अधिकार, तथापि मैं विचार दृष्टि से देखता हूं तो सारी पृथ्वी में खोजने पर भी कहीं पर भी मुझे मेरा राज्य दिखता ही नहीं है। जब पृथ्वी पर अपने राज्य का पता ही नहीं पा सका तो मैंने मिथिला में खोज की, मिथिला के अंदर भी मुझे मेरा राज्य नहीं मिला, तो अपनी प्रजा पर अपना अधिकार का पता लगाया किंतु उन पर भी मेरे अधिकार का निश्चय नहीं हुआ, तो अंत में मैं ये निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ब्राह्मण कहीं पर भी मेरा राज्य नहीं है, या यदि राज्य है तो सब जगह मेरा राज्य है, क्योंकि इस शरीर भी मेरा नहीं तो और दृष्टि से सारी पृथ्वी मेरी कैसे हो सकती है। मैंने कितनी अज्ञानता में कह दिया कि मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ। ये जैसे पृथ्वी मेरी है ऐसे औरों की भी है, सबकी है, जितने रहने वाले हैं। इसलिए मैं तो आपसे यही कहता हूं, मैंने जो आदेश दिया कि मेरा राज्य छोड़ो उसको मैं वापस लेता हूं, और आपकी जहां इच्छा हो आप चले जाओ। ब्राह्मण ने कहा, राजन जब आपके बाप दादों के समय से मिथिला प्रांत के राज्य पर आपका अधिकार है तो बताइए किस विचार से आपने इसके प्रति अपनी ममता को त्याग दिया, किस बुद्धि का आश्रय लेकर आप सर्वत्र अपना राज्य मानते हैं, है तो सब जगह है नहीं तो कहीं नहीं है, ये आप कैसे बोलते हैं। जनक जी ने कहा, इस संसार में कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली सभी अवस्थाओं का एक न एक दिन अंत होता है, तब ये वेद पूछता है कि जिस वस्तु को तुम अपनी मानते थे बताओ ये वस्तु किसकी है, ये वस्तु क्या तुम्हारे साथ हरदम रहती है, क्या तुम वस्तु के साथ हरदम रहते हो। तब हमारे पास जवाब यही है कि नहीं, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे साथ रहे, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जिसके साथ हम रहे। ऐसा विचार करके मैंने सब जगह से अपनी ममता हटा ली। इस दृष्टि से कहता हूं कि मेरा कहीं पर भी शासन नहीं है। देखो जहां तक नाक पहुंचती है तब तक कहता हूं ये सुगंध मेरी है, लेकिन मैंने नाक को जीत लिया, अब मुझे मैंने पृथ्वी को जीत लिया। मुख में पड़े हुए रसों को मैं तृप्ति के लिए स्वीकार करता था, तब कहते ये रस मेरा है, भोजन मेरा है, लेकिन मैं रस से ऊपर उठ गया, तब मुझे लगा कि मेरा रस से कोई संबंध नहीं। ऐसे ही नेत्र है, ऐसे ही श्रवण है, ऐसे ही स्पर्श है, सब इंद्रियों से ऊपर उठ गया तो मेरा इस संसार में कोई संबंध नहीं और मैं स्वयं सर्वत्र विराजमान हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरा राज्य सब जगह है। ये बातें सुनकर ब्राह्मण ठहका मार करके हंस पड़ा और कहने लगा, महाराज आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्रश्न करने वाला ब्राह्मण आपके सामने कौन है। मैं धर्म हूं और आपकी परीक्षा के लिए ब्राह्मण का रूप धारण करके आया हूं। अब मुझे निश्चय हो गया है कि संसार में सत्वगुण नेमी से घिरे हुए और कभी पीछे की ओर न लौटने वाले ब्रह्म प्राप्ति रूप दुर्निर्वार चक्र का संचालन करने वाले एकमात्र आप हैं। आपको ब्रह्म प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण ने कहा, हे भीरु, तुम अपनी बुद्धि से मुझे जैसा समझकर फटकार रही हो वैसा मैं नहीं हूं। इस लोक में देहाभिमानियों के समान कर्म नहीं करता हूं। मेरे कर्म ज्ञानमय होते हैं। जो कुछ संसार में दिखता है वो मेरे द्वारा व्याप्त है। ज्ञानी मेरा धन है और ज्ञानी मेरे साथी हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम के जो धर्म है वही ज्ञान मार्ग के साधन है। ब्राह्मणी ने कहा कि मुझे आपके इस ज्ञान का पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको कह दिया, आप मुझे क्षमा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, इस प्रकार उस ज्ञान में स्थित रहो और ज्ञान में स्थित रहकर तुम आगे के विषय में विचार करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण